Ekledik.
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानन्दन व्रज जनरन्दन, यशोदानन्दन व्रज जनरन्दन, यमुना तीरावन सारी, यमुना तेरा वन सारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानन्दन व्रज जनरन्दन, यशोदानन्दन व्रज जनरन्दन, यमुना तेरा वन सारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Onikai Gora Haribol, 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 Haribol. नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की निताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके श्रीमद्भागवतम स्कंद अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 23। तथा च अवभृत स्नान विधुत अशेष किल्विष सरस्वत्याम महानगाम रेजे व्यभ्रम इव अंशुमान ततचेव वभृतु स्नानम विधुत कल्विष सरस्वत्या महानगारेजे व्यभ्र इव अंशुमान ततचेव वदस्थान विद्युताशेष कल्विष सरस्वत्या महानगारेजे व्यभ्रम इवांशुमान ततचैव विविध स्नान विधुताशेष कल्विष सरस्वत्या महानगारेजे व्यभ्रम इवांशुमान। बोलिए ततस्तावृध स्नान विदुराशेष कल्विष पत्या महानगम सरस्वत्या महानगाम रे जे व्यभ्रंशुमान ततस्वावृष स्नानम विधुताशेष किल्विष सरस्वत्या महानगाम रे जे व्यभ्रम इवांशुमान। माताजी ततस्वावृथ स्नान विदुताशेष किल्विष सरस्वत्या महानगाम रे जे व्यभ्रम इवांशुमान ततस्तावृत स्नान श्लोक में आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। तत तत्पश्चात च ए अवभृत स्नान यज्ञ संपन्न करने के बाद स्नान करके विधुत धो डाला अशेष असीम किल्विष पाप कर्मों के फल सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तट पर, महानघाम पार्वती महान नदी रेजे परशुराम प्रकट हुए, व्यभ्र निरभ्र रहित इव अंशुमान सूर्य प्रकाश। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तत्पश्चात भगवान परशुराम ने यज्ञ अनुष्ठान पूरा करके अभ्रुत स्नान किया और महान नदी सरस्वती के तट पर खड़े समस्त पापों से विमुक्त परशुराम बादल रहित आकाश में सूर्य के समान लगने लगे। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 3:9 में, यज्ञार्थ कर्मणि अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत में बांध देता है। कर्म बंधन एक के बाद एक दूसरा शरीर ग्रहण करते रहने का पोतक है। वह जन्म मृत्यु का चक्र ही जीवन की सारी समस्या है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि विष्णु को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करने का कर्म किया जाए। यद्यपि परशुराम भगवान के अवतार है, किंतु अपने पाप कर्म के लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। इस भौतिक जगत में कोई कितना ही जागरूक क्यों न हो, कुछ ना कुछ पाप कर्म करता ही रहता है, भले ही वह पाप करना न चाहता हो। उदाहरणार्थ सड़क पर चलते हुए अनेक जीव पांव के नीचे अनेक छींटियां तथा कीड़े कुचल जाते हैं और अनजाने ही अनेक जीवों की हत्या हो सकती है। इसलिए पंचयज्ञ वैदिक सिद्धांत अनिवार्य है, किंतु इस कलयुग में लोगों को बहुत बड़ी छूट मिली है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। हम हरे कृष्ण के प्रपंच अवतार भगवान श्री चैतन्य की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्णम, यद्यपि ये साक्षात कृष्ण है, किंतु वे सदैव हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह संकीर्तन यज्ञ द्वारा इस अवतार की पूजा करें। संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना मानव समाज के लिए विशेष छूट है, जिससे लोगों को ज्ञात या अज्ञात पाप कर्मों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। हम अनंत पापों से घिरे हैं, अतएव हमारे लिए अनिवार्य है कि हम कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवञ्च श्रीरूपं सागरजातम् सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखानीतं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वांसाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा की, जय भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया। आप सभी भक्तों के शरणों में सदर वंदना करते हुए इस भागवत कक्ष में हम अग्रसर होते हैं। सर्वप्रथम विष्णु के शरणों में वंसा कल्प त्रिव्य कृपा सिंधु व्यवस खचिता नाम पावने वैष्णव्यो। तो प्रसंग जो सदा ऐसे भी भक्त सुन रहे हैं हम अनगिनत भक्तों से वैष्णव से, और सभी इस प्रसंग से अवगत है। इस भौतिक जगत में देखा जाता है कि जो महाप्रभावशाली कोई चीज रहता है कभी कभी दुख का कारण बनता है। वैसे देखा जाए तो कृष्ण लीला में जो द्वारका लीला में है, सत्राजीत के पास जो समझन संघ मणि आया था वो भी बहुत कुछ सोना प्रदान करने वाला था, फिर भी वो दुख का कारण, यहाँ तक कि उनका वध का भी कारण हुए। सत्राजीत के पास जो मणि था वो उनका भाई का वध भी वो मणि के कारण ही हुआ, और साथ साथ में उनके मित्र से सद्धनवा कृतवर्मा साथ साथ में अक्रूर जी भी उसमें शामिल हो गए उस षड्यंत्र में, क्योंकि वो मणि इतना प्रभावशाली था कि सब कुछ। और अक्रूर जी भी जो वंदन के आचार्य हैं नवदा भक्ति में, वो भी उनसे प्रभावित हो गए और उसमें शामिल हो गए। तो इस भौतिक में इतना कोई कोई प्रभावशाली जो महाप्रभावशाली वस्तु रहता है उनके दुख का कारण बनता है। उसी तरह इस प्रसंग में हम देखते हैं जो परशुराम का इस प्रसंग सदा है, जो काम धेनु गाय थे वो सारे प्रसंग का सारे लीलाओं का मेन कारण काम धेनु गाय है, वहाँ से शुरू होता है पूरा प्रसंग। जो सहस्त्र बाहु अर्जुन उसके आश्रम जमदा अग्नि के आश्रम में आए थे और काम धेनु गाय के कारण उनका स्वागत और सम्मान किया, तो उसको प्रभावित हो गए कार्तवीर्य अर्जुन, तो वो गाय को चाहने लगे, उनको इच्छा होगी इसको प्राप्त करने के लिए, और वो लेके चले भी गए। लेकिन जबद अग्नि कुछ कहा नहीं उस समय, और गाय लेकर और गाय बंद करके भी इच्छा नहीं थी गाय को भी काम दे गाय को, लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन उनको लेके गए उनके सैनिक के साथ और आक्रमण कर लिया, गाय भी उनके साथ चली गई। फिर बाद में जब परशुराम आए तो उनको पता चला कि उस सहस्रबाहु अर्जुन उस गाय को लेके गए जो हमारे पास थी, तो उनको लेने के लिए परशु उठाया परशुराम ने और महस्पति नगरी के और दौड़ पड़े परशुराम, और जाकर सहस्रबाहु अर्जुन का वध भी कर दिए और गाय को वापस लेके आए। जब गाय को वापस लेके आए और पिताजी को जमद अग्नि को सब बताया वृतांत, इसी तरह मैंने सहस्रबाहु का सब बाहु काट कर उनका वध कर दिया है, तब बहुत शिक्षा अच्छी देते हैं जमद अग्नि और कहते हैं कि आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया, क्योंकि जो राजा होता है वो देव के आशीर्वाद से वो राज्य संभालता है, वो राजा प्रजा का गीत करता है, इसलिए ब्राह्मण का गुण होता है कि उनको क्षमा करें, वही ब्राह्मण का सबसे महान गुण बताया गया है। तो जो आपने किया वो अच्छा नहीं किया, वो उपदेश ही है दो श्लोक में 15 अध्याय में 39 और 40 नंबर के दो श्लोक में, कि आपको क्षमा करना था उनको लेकिन आपने वध कर दिया, तो अच्छा नहीं किया। जो ब्राह्मण का गुण है क्षमा करना, लेकिन आपने वध कर दिया, इसलिए आपको इसका पश्चाताप करना पड़ेगा, तीर्थ भ्रमण करना पड़ेगा। तो जमदाग्नि के आज्ञा से परशुराम तीर्थ पर चले गए तीर्थाटन पर, और इधर नित्यक्रम जमदाग्नि का कार्य चलता रहा। फिर एक बार उनको जल की आवश्यकता पड़ी तो उनकी पत्नी रेणुका को भेजा जल लेने के लिए, और उधर गंगा के तट पर उसने देखा चित्ररथ के साथ कुछ उनके अप्सरा थी, तो दृश्य देखकर उनको जल लाने में थोड़ा विलंब हो गया, तो विलंब होने के कारण थोड़ा यज्ञ में रुकावट हो गई। तो आते समय उनको ज्ञात हो गया रेणुका को मुझे जाने में देरी हो गई है, तो देरी के कारण वो मन में सोच रही थी कि मुझे साफ मिलेगा, ऐसे घबराई हुई आ रही थी, और आकर वो जल का घड़ा रखा और चुपचाप खड़े रहे जमदग्नि के सामने रेणुका जी। तो अब जमदग्नि ने समाधिस्थ होकर पता लग गया कि उसको किस वजह से देरी हो गई, तो वो सोच लिया कि वो चित्ररथ का उनको देखने के लिए उनको देरी हो गई। तब परशुराम को बुलाया और उनने उनके भाई पांच भाई और परशुराम मिलकर छह भाई थे वो, तो उनको बुलाकर कहा कि उनको वध कर दो, ये पापी नहीं है। तो उन्होंने दूसरे भाइयों ने मना कर दिया। फिर परशुराम ने कहा कि आप उनका वध कर दीजिए। क्रोध आ गया दमदग्नि को, और क्रोध के कारण आप इसको भी मार, आप वध कीजिए और आपके जो भाई हैं उनका भी वध कीजिए। तो परशुराम ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया और माता का भी वध कर दिया और भाइयों का भी वध कर दिया। तो वध करने के बाद फिर उनको तो मालूम था प्रभाव दमदग्नि का, तो प्रभाव के कारण उसने फिर प्रसन्न होकर कहा कि आपको क्या चाहिए मांगिए। तो फिर कहा कि जो मेरा भाई है और माता है उनको जीवित कीजिए, फिर बाद में उनको ऐसा स्मरण भी न हो ताकि मैंने वध किया है। तो इस प्रसंग से यह भी बात पता चलता है कि दमदग्नि आगे शिक्षा दे रहे थे परशुराम को कि ब्राह्मण को चाहिए कि वो क्षमा करे। ब्राह्मण का बहुत बड़ा गुण होता है क्षमा करना। तो फिर इधर इनकी पत्नी और उनके बच्चों का इतना बड़ा अपराध नहीं था, फिर भी क्रोध में आकर कहा उसको व्यक्त कर दो, उसको मार डाल। तो ऐसा क्यों हुआ? तो कहते आचार्य कि जो दमदग्नि थे वो जो जानते थे ज्ञान, लेकिन उनके आसन में नहीं आया, तो क्रोध करके फिर आज्ञा दे दिया। तो उपदेश दिया परशुराम को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको आप ब्राह्मण है राजा का वध, फिर भी उसने दमदग्नि ने वो ज्ञान भूल गए और उसने आज्ञा दी कि आप उनको वध कीजिए, क्योंकि जब देखा जाए तो उतना बड़ा अपराध नहीं था। जैसे देखा जाए जयाति महाराज, उनके पुत्र यदु महाराज ने उनकी आज्ञा का अवज्ञा किया था, लेकिन उसने भी ऐसी आज्ञा नहीं दी थी उस राजा होकर भी, क्षत्रिय होकर भी, कि उनको वध कर दो उनको भाइयों को। लेकिन ये ब्राह्मण होकर भी ऐसी आज्ञा दी कि उनको वध कीजिए। तो इस प्रसंग से भी ज्ञात होता, उनके पास ज्ञान था लेकिन व्यवहार में इतना नहीं था। जब व्यवहार में होता तो आज्ञा कभी नहीं देते कि आप उनका वध कर। तीर से ये शिक्षा भी हमें लेना चाहिए कि जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में व्यवहार भी रूप से भी होना चाहिए, व्यवहारिक आचरण भी ऐसा होना चाहिए। तो फिर परशुराम ने फिर से जीवित हो गए और प्यार पुनः जैसे निंद्रा से उठकर आए ऐसे इसी तरह वो जागृत हो गए उनके भाई और माता रेहू का। फिर बाद में परशुराम और अन्य भाई सब जंगल में गए कुछ सामग्री लाने के लिए, और इधर इसी प्रसंग को देखकर सहस्त्रबाहु के पुत्र वो भी खिन्न रहते थे, उनके पिताजी का वध हो गया इसलिए क्रोध में, और उनको सोच रहे थे कैसे इसका बदला लिया जाए। तो क्रोध के कारण व्यक्ति का भगवद गीता में जैसे कहा गया है, क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात विभ्रम, स्मृति विभ्रम, स्मृति प्रसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्राणसिंति। वो प्रभाव जानते थे परशुराम का, सहस्त्रबाहु के पुत्र जो आकर, जो इतना बड़ा सहस्त्रबाहु थे, फिर भी परशुराम अकेले आकर उनको वध करके चले गए थे। उनका प्रभाव तो देखे होंगे ना, फिर भी क्रोध के कारण, अपने ही बुद्धि के कारण, उनका क्रोध के कारण बुद्धि नाश हो गया और अपने बुद्धि के कारण वो विनाश होने के लिए आए इधर दमदग्नि के आश्रम पर। और दमदग्नि उसी समय ध्यानस्थ बैठे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो आकर उसका गला काट दिया उस हजारों पुत्रों ने, और गला काट के फिर वो उनका सिर ही लेकर चले गए उनकी नगरी में। तब रेणुका जी बहुत चिल्लाने लगी और परशुराम को राम राम कह के पुकारने लगी। उसी स्थान पर सुखदेव गोस्वामी कहते कि रेणु किसी महा सती थी। फिर आगे जो बताया दमदग्नि को पापी नहीं है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते कि महा सती है, पापी नहीं। उसको संदोख के कारण भगवान की इच्छा से वो रुक गई थी, लेकिन देखा जाए तो रेणुका जी महा सती है, सुखदेव गोस्वामी इसी श्लोक में कहते हैं। तो दमदग्नि को गला सिर काट कर वो सिर लेकर चले गए। फिर इसी क्रोध आवाज से जो रेणुका जी पुकारने लगी परशुराम को और अन्य पुत्र को, तो वो आवाज सुनकर वो जंगल से आए। परशुराम और अन्य भाई सब आकर देखा तो उनके पिताजी का खाली शरीर पड़ा था, उनका सर नहीं था, और विलाप करने लगे अन्य भाइयों और परशुराम भी। तब परशुराम को फिर से क्रोध आ गया और चल दिया परशु उठाकर उस महस्वती नगरी में, और गया परशु बच्चों को और सब मार डाला, उनको पुत्र को सब हजारों पुत्र थे उनको, और पूरे 21 बार सारे क्षत्रिय को उस क्रोध के कारण उस बहाना बनाकर तो उस सबको मारने लगे। और वो फिर बाद में अपने पिताजी का सर लेकर आश्रम में आ गए, और आश्रम में आकर फिर बाद में जितने क्षत्रिय थे पृथ्वी में 21 बार सभी क्षत्रियों को पृथ्वी से क्षत्रियहीन कर दिए। फिर बाद में परशुराम उस शीर को उस शरीर से मिलाए और कुछ घास को रखा और भगवान वासुदेव से प्रार्थना की और फिर से पुनर्जीवित हो गए यज्ञाग्नि, और जीवित होकर फिर बाद में अभी सप्तऋषि में उनका स्थान है यज्ञाग्नि का, आगे श्लोक में आएगा। तो इस प्रसंग से परशुराम जब ये सब कार्य हो गया फिर यज्ञ शुरू किए, जो पिछले श्लोक में 21 में श्लोक थे उस श्लोक में यज्ञ किए परशुराम, और यज्ञ के कारण जो यज्ञ में आए हुए थे ब्राह्मण और यज्ञ कराने वाले होता जो ब्राह्मण होता जो उच्चारण करते वो सबको भूमि दान कर दिए, क्योंकि क्षत्रिय तो हीन हो गए थे, भूमि का कोई रक्षक नहीं था। उसी समय सभी ब्राह्मणों को भूमि का दान परशुराम ने कर दिया, सभी कुछ और थोड़ा भी बहुत कुछ बचा था तो सहायक जो यज्ञ में सहायक ब्राह्मण थे उसको भी दे दिया, पूरा भूमि का दान परशुराम ने कर दिया। फिर दान करके फिर बाद में परशुराम ने इस श्लोक में जो आज देखते हैं तत्पश्चात उसके बाद तत् शब्द है ना तत् उसके बाद परशुराम ने क्या किया कि जो यज्ञ विधि पूर्ण होने के बाद जो यज्ञ कराने वाला होता है उनको स्नान करना पड़ता है, तो परशुराम उस सरस्वती नदी के तट पर गए और स्नान किए, और स्नान के बाद जो अभी अशेष किल भी था अशेष थोड़ा जो उनका पाप रह गया था, पूर्ण पाप था लेकिन थोड़ा रह गया, मतलब इस श्लोक के तात्पर्य में विजय ध्वज जी बताते हैं कि जब तीर्थ भ्रमण किया था तब उनका पाप नष्ट हो गया था प्राय, लेकिन अशेष थोड़ा बहुत बस गया था, वो पाप इस सरस्वती नदी में स्नान करने से उनका समाप्त हो गया, सारे किल विषय से मुक्त हो गए परशुराम। और मुक्त होकर कैसे रहने लगे कि जिस तरह बादल हटने से सूर्य का प्रकाश होता है ये वह अंशुमान, इसी तरह परशुराम चमकने लगे सूर्य के समान। तो इसी शब्द से भी ये भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि जब तक व्यक्ति के जीवन में पाप या कलमश रहता है तो उनकी तेज या उनका प्रभाव कम है और दिखता नहीं, जिस तरह सूर्य है पूर्ण शक्तिमान प्रकाश देने में, लेकिन बादल आ जाता है तो ढक जाता है उनकी प्रकाश तेज। और जब व्यक्ति के जीवन में कुछ कलमश या पाप रहता है तो उनका तेज ढक जाता है, लेकिन जब वो पूर्ण रूप से शुद्ध और कलमश रहित हो जाता है तब सूर्य की तरह वो चमकने लगते हैं। जिस तरह हम देखते हैं प्रकाशानंद सरस्वती के सभा में चैतन्य महाप्रभु प्रकाशमान हो रहे थे सूर्य के समान, और इस गंगा नदी के तट पर सुखदेव गोस्वामी प्रकाशमान हो रहे हैं अपने प्रभाव से, अपने कलमश रहित होकर होने से। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कह रहे थे, कहने की शुरुआत कर रहे थे, उसी समय देवताओं आए थे उनके पास कि हमको ये भागवत कथा दीजिए और अमृत आप सुखदेव गोस्वामी को कहे कि आप अमृत परीक्षित महाराज को पिला दीजिए। सभी आए थे उसी समय, उनके साथ थे अग्निदेव वरुण देव सभी पवन देव, तो वो भी सोचने लगे, और सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आप इस भागवत कथा के अधिकारी नहीं, आप यहाँ से निकल जाइए सभा से। तब वो बड़े बड़े पद वाले वरुण देव पवन देव अग्निदेव वो सोचने, ये मुनि होकर हमको भगा रहे यहाँ से, हमारा प्रभाव नहीं जानते कि मैं, जब पवन देव सोचने लगे अगर मैं अपने कार्य शुरू करूँ तो पूरा पृथ्वी को उड़ा सकता हूँ, और अग्निदेव के सोचने लगे कहने लगे मेरा प्रभाव नहीं जानते ये मुनि होकर कि हमको यहाँ से सभा से निकाल रहे हैं, तो मेरा इतना प्रभाव है कि जो मैं जलाने लगूँ तो पूरा विश्व को जलाकर राख कर दूँ, अग्निदेव में इतनी शक्ति है। इसी तरह सब देवताओं को इतना अपने शक्ति में अभिमान था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का इतना प्रभाव और तेज था कि उसके सामने कुछ बोल नहीं पाए, वो उनके उनके प्रभाव था ऐसा सुखदेव गोस्वामी का। तो सुख साहब वहाँ से निकल गए, वो सोच रहे थे हमारे पास इतनी शक्ति पूरा जगत को जला सकते हैं या पवन से उड़ा सकते हैं, अब वरुण देव सोचने लगे मैं पूरा पानी से भर दूंगा इस घर, लेकिन कुछ नहीं कर पाए सुखदेव गोस्वामी के सामने। और वहां से चल गए आप सुख साहब, क्योंकि उतना प्रभाव था सुखदेव गोस्वामी का। तो इसी तरह परशुराम का इधर सूर्य का समान चमकने लगे और पूर्ण शक्तिमान होकर स्नान किया, फिर बाद में पाप रहित और सभी भूमि दान में दे दी। फिर परशुराम ने सोचा सभी भूमि तो दान में दे दी, अभी मैं कहाँ रहूं, जो दान दे या उस चीज को यूज नहीं कर सकते अपने लिए। तो पूरी भूमि उसने दान कर दी थी, जिस तरह बलि महाराज ने वामन देव को दे दिया था, पर उनके पास कुछ बचा नहीं था देने के लिए। तो उसी तरह परशुराम के पास भूमि पर खड़ा रहने की भी जगह उनके पास नहीं थी। तब क्या किया जाए, जो दान में दिया तो वापस लिया नहीं जाता, तो रहने के लिए क्या कुछ साधना, तो वैसे कुछ स्थान तो चाहिए। फिर परशुराम ने अपना फरशु चलाया, एक कोणा कोंकण, ये जहाँ महाराष्ट्र से शुरू होता है कोंकण स्थान, वहाँ से कर्नाटक उसने फरशु का ऐसे फेंका, तो वो समुद्र तट पर, पूरा समुद्र तट पर, कोंकण से, कोंकण क्षेत्र से कर्नाटक तक उस क्षेत्र में पानी सूख गया जहाँ फरशु फेंका था वो। और पानी सूखने के बाद उधर भूमि का प्रकट हुई और भूमि से वो स्थान, आज भी वो स्थान को परशुराम क्षेत्र कहते हैं। और बीच में मध्य में जहाँ उड़ुपी कृष्ण स्थान से महाराष्ट्र समाप्त होने के बाद कर्नाटक शुरू होता है, तो उड़ुपी कृष्ण के स्थान पर वो बीच में परशुराम ने अपना रहने का स्थान या समाधि का स्थान या ध्यान अवस्था का स्थान प्राप्त किया। और उसी स्थान पर ऐसा प्राप्त किया, वो उस स्थान को आज रुप्य पीठ कहते हैं। रुप्य पीठ मतलब रूपा, सोना, सोना ने रूपा चांदी, चांदी का आवरण बना दिया उसने परशुराम ने, और आवरण बनाकर उसी स्थान पर वो ध्यान अवस्था में बैठ गए। तो आज भी उधर उड़ुपी कृष्ण के पास, उड़ुपी कृष्ण मंदिर है, उससे 7 माइल दूर वो स्थान है, मंदिर भी है परशुराम जी का, और वहाँ ध्यान अवस्था में बैठते हैं, और आज भी है उधर। और फिर बाद में परशुराम उस स्थान भी, वहाँ का जो समुद्र तट है उस, आज भी उनकी रेतु बालू है वो चांदी की तरह समझती है, क्योंकि रूपा तरह वो स्थान है, रुप्य पीठ उसको कहा जाता है, रूपा का पीठ, चांदी को रूपा भी कहा जाता है, तो उसके वजह से उसको रुप्य पीठ कहा गया है। तो उस स्थान पर परशुराम आज भी समाधि या ध्यान अवस्था में है। तो ऐसे परशुराम ने वो स्थान बनाया अपने लिए, वो परशुराम क्षेत्र ब्राह्मण को दान देने के बाद। तो इस प्रसंग से ये भी, इस वैसे देखा जाए तो प्रभुपाद इस अनुवाद में लिखते हैं तो परशुराम साक्षात भगवान है। तो भगवान होने के बाद भी इस पूरे लीला को हम देखेंगे तो परशुराम का जो चरित्र है वो अनुकरणीय भी नहीं है और उनका उपदेश अनुसरण भी नहीं है। कोई कोई भगवान का सत्यावेश अवतार ऐसा भी होता है कि जो अनुकरण के लायक भी नहीं होता है और उनकी आज्ञा का अनुसरण करने के लायक नहीं होता है। अगर देखा जाए अनुकरण के माध्यम से तो उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके उनका माता का वध कर दिया। अगर कोई सोचे कि हमको अनुकरण करे तो ये हो ही नहीं सकता। और अनुसरण, उनकी आज्ञा का अनुसरण देखा जाए तो जब उसने आज्ञा दी भीष्म पितामह को कि आप वो अंबालिका से ब्याह कीजिए, शादी कीजिए, तो उस आज्ञा का पालन नहीं किया भीष्म पिता ने। यदि भी देखा जाए तो परशुराम भगवान है, धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम, तो भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए ना भीष्म पितामह को। 12 महाजन्म में एक भी महाजन है, फिर भी वो आज्ञा का पालन नहीं किया। वैसे देखा जाए तो भीष्म पितामह का भगवान भी है परशुराम और गुरु भी है, तो भगवान की भी आज्ञा नहीं मानी और गुरु की भी नहीं। तो इसलिए इस प्रसंग में परशुराम को पूरा प्रसंग को देखे तो अनुसरण भी नहीं है और अनुकरण भी करने के योग्य नहीं। फिर कहीं कहीं प्रभुपाद कहते हैं कि इस पूरा प्रसंग से हमें यह ज्ञात होता है कि जो कर्म करते हैं उनको कर्म बंधन लगता है। तो इस पूरा प्रसंग में यही प्रसंग है, जो जमदग्नि थे उनको कहा कि आप अपने माता और पुत्र को वध कीजिए, तो उनको कर्म लगा, तो सहस्त्रबाहु अर्जुन का पुत्र आए, उनको गला काट दिया। और परशुराम ने जो सारे क्षत्रियों को मारा, वध किया, तो उनका भी कर्म लगा, तो उसने यज्ञ करना पड़ा। तो इस पूरा प्रसंग का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति कर्म करता है इस भौतिक जगत में, चाहे वो परशुराम हो या जमदग्नि हो या सहस्त्रबाहु हो, उनको कर्म बंधन लगता है। तो इस अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद प्रथम शुरुआत ही वहां से करते हैं कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए लेकिन विष्णु के प्रसंग के लिए कर्म करना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई कर्म करेंगे तो कर्म बंधन व्यक्ति लिए। और कर्म बंधन क्या है? उसी कर्म से उसको दोबारा जन्म और दूसरा शरीर प्राप्त करने का बंधन लगता है। तो वहीं से उनका चक्कर 84 लाख प्रकार योनि में चक्कर शुरू होता है। तो इसी प्रकार कर्म बंधन से छूटने के लिए प्रभुपाद अपने सरल तात्पर्य में बताए हैं कि उसका छूटने के लिए अभी यज्ञ करने की आवश्यकता है कलियुग में। तो सबसे सुंदर और सरल रास्ता है संकेतन यज्ञ जजंत मेधस। तो इस कलियुग में देखा जाए यज्ञ करने की कोई क्षमता नहीं किसी की, तो सबसे सरल रास्ता है प्रभुपाद बताते हैं संकेतन यज्ञ। तो संकेतन यज्ञ करना चाहिए व्यक्ति को, तो इसी से सभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है और कर्म बंधन से छूट सकता है। प्रभुपाद के हिसाब से जो व्यक्ति यज्ञ और करने की इच्छा रखते हैं लेकिन यह कलयुग में संभव नहीं है, तो खास करके प्रभुपाद कहते हैं कि संकीर्तन यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस श्लोक का यही तात्पर्य और भावार्थ है। और इस श्लोक में जो सरस्वती नदी आई है, सरस्वती तट, सरस्वती में स्नान किया है, तो इस सरस्वती नदी बद्री का आश्रम में बहती है जहाँ व्यास देव अपने आश्रम सम्यक प्राश नाम के आश्रम में जो ग्रंथों की रचना की, लिपिबद्ध किए वेद और अंत में श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो और सरस्वती नदी तो साक्षात नदी के रूप में है और वही देवी के रूप में भी है। और उस सरस्वती का दो कार्य है, एक विद्या की देवी। प्रभुपाद जो हम मंगलाचरण में गाते देवीम सरस्वती व्यासम, उस श्लोक में अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं कि जो सरस्वती है विद्या की देवी है। विद्या की देवी मतलब ज्ञान की देवी, जो सरस्वती वो ज्ञान की देवी है। और श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद में सत्य अध्याय में 23 नंबर श्लोक में भी सरस्वती का नाम आया है, जब बद्री का आश्रम में जब अन्य पुराणों की रचना करके व्यास देव जब उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ तब वो सरस्वती नदी के तट पर गए और स्नान किए, तो वहाँ भी सरस्वती नदी का नाम आया है। तो वहाँ आचार्य कहते हैं कि वहाँ भगवान की वाक्मय शक्ति सरस्वती है। वाक्मय मतलब वाणी। प्रभुपाद कहते विद्या की देवी और अन्य आचार्य और श्रीधर स्वामी वो सब कहते हैं कि वाक्मय शक्ति सरस्वती है। तो दोनों है, अगर किसी को वाणी पर प्रभावशाली वाणी बनाना है तो उनको सरस्वती की आराधना या पूजा करनी होगी, और ज्ञान प्राप्त करना है तो अभी सरस्वती के शरणों में उन्हें जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो हम मंगलाचरण में कहते देवी सरस्वती व्यासम शुद्ध गोस्वामी द्वारा ये उच्चारित श्लोक है, तो शुद्ध गोस्वामी इस श्लोक से सरस्वती देवी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि उनको भगवान के गुण के लिए भगवान की कथा कहने के लिए ज्ञान और वाणी की जरूरत थी। और हम देखते हैं अन्य अभी जो कलाकार कोई रहते हैं वो भी सरस्वती की पूजा और उपासना करते हैं लेकिन वो धन कमाने के लिए, लेकिन शुद्ध गोस्वामी उस हिसाब से उनकी मंगलाचरण में उस श्लोक को गया है, उनका प्रणाम किए हैं, तो उनकी ये तो था भगवान का और भक्त भी इसलिए सरस्वती देवी को प्रणाम या प्रणाम करते हैं ताकि उनकी वाणी और उनको ज्ञान प्राप्त हो, भगवान का गुणगान कर सके और उनको ज्ञान से और उन भगवान की कथा और उनका चरित्र समझ सके। तो इसलिए सरस्वती नदी का एक प्रभाव है और वो मूर्तिमान और विशेष सरस्वती से अन्य अन्य देवता भी कुछ कुछ कार्य बनाते हैं, जैसे रामायण में देखते हैं कि कुंभकर्ण मिति भी अपनी जुबान पर सरस्वती जाकर उसने उनका उच्चारण गलत करवाया था, उनको चाहिए था इंद्रासन लेकिन इंद्रासन में उनको परिवर्तन कर दिया सरस्वती द्वारा देवताओं के कार्य, और मंथरा के द्वारा भी उस प्रसंग को पूरा पलट दिया। इस सरस्वती जो भगवान की शक्ति है और वही नदी के रूप में बद्रिकाश्रम से प्रवाहित होती है लेकिन प्राय इस उधर ऊपर से नीचे आकर वो लुप्त तो हो जाती है और गंगा में आश्रित होकर गंगा के प्रवाह में लुप्त तो होकर बहती है। और प्रयाग में भी वैसे त्रिवेणी संगम माना जाए लेकिन गंगा के प्रभाव में है। तो इसी तरह सरस्वती का भी महत्व है और उसी सरस्वती के नदी में गए परशुराम और स्नान करके उनका पाप से रहित हो गए, और ब्राह्मणों और सभी वैष्णव भक्त सरस्वती की पूजा करते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि वो अपने वाणी पर मधुरता आए और उनको ज्ञान प्राप्त हो तो भगवान की सेवा और कर सके। तो इसी श्लोक में इसी भाव है कि परशुराम सरस्वती ने, और वे भी कहीं पता नहीं चलता कि स्थान कहाँ आया है, इस सरस्वती नदी के तट पर जो परशुराम ने यज्ञ किया और स्नान किया वो कौन से स्थान में है भारत में, उस स्थान को मैंने पूछा। दो तीन जो जानते हैं भागवत को वो आचार्य किसी का पढ़ते हैं तो बोला स्थान की कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, वो कौन से स्थान पर परशुराम ने स्नान किया और कौन से स्थान पर ये यज्ञ किया, वो सरस्वती नदी के तट पर ही यज्ञ किया है, लेकिन वो भारत में कौन सा स्थान है वो कहीं आचार्यों ने कहीं लिखा नहीं है। तो मुख्य रूप से यही इस श्लोक का भावार्थ है। और प्रभुपाद सरल रूप से कहते हैं कि यज्ञ संकीर्तन ही इस कलयुग का सार है। तो नाम संकीर्तन व्यक्ति को पाप से मुक्त कराता है और बंधन से भी मुक्त कराकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित करवाता है। तो एक समय श्रीपाद रामानुजाचार्य परिभ्रमण अपने सन्यासी शिष्यों के साथ लेकर दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते करते वो दक्षिण भारत में कन्याकुमारी के पास एक मालकोट नाम का स्थान है, वहाँ गए श्रीपाद रामानुजाचार्य और इनके साथ इनके कई हजारों शिष्य थे सन्यासी, वो वहाँ गए। और वहाँ मालकोट स्थान में एक लक्ष्मीनारायण का बहुत सुंदर मंदिर है प्राचीन, उस मंदिर में गए रामानुजाचार्य और उनके शिष्य और कीर्तन किए, कीर्तन करके दर्शन किए, प्रणाम किए लक्ष्मीनारायण को। और प्रणाम करते समय जब वहाँ से लौट रहे थे तो उसी समय लक्ष्मीनारायण ने साक्षात भगवान विष्णु ने रामानुजाचार्य को इशारा करके बुलाया, आप इधर आइए। तो रामानुजाचार्य देख मुझे बुला रहे हैं, साक्षात विग्रह के रूप में थे लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान, फिर से इशारा किया सुख से, धीरे से इशारा किया रामानुजाचार्य ने रामानुजाचार्य को, तब रामानुजाचार्य उसके पास गए विग्रह के पास जो लक्ष्मीनारायण का था। तब उस विग्रह ने कहा कि आपने जो आपके साथ जो जितने शिष्य है आपके भक्त हैं भगवान की सेवा में आपने कैसे लगाया उनको, उनका रहस्य क्या है वो बताइए। विष्णु भगवान साक्षात लक्ष्मीनारायण पूछ रहे हैं रामानुजाचार्य से कि आपने इसको इस युग को कैसे भगवान की सेवा में लगाए, उसका रहस्य क्या है वो बताइए। मैंने कितनी बार उपदेश दिया साक्षात आकर कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि पर, मैंने भगवद गीता का उपदेश दिया फिर भी लोग और कहा कि सर्वधर्मान परिचय माम एकम शरणम व्रज, कोई आया नहीं, यहाँ अर्जुन एक ही आए, फिर बाद में वो सुन रहे थे दूसरा संजय, कोई नहीं उस उपदेश को ग्रहण किए, पर अन्य लोग भी सुन रहे थे पूरी भगवद गीता का, कोई ग्रहण नहीं किए, फिर आपने ऐसे युवक को कैसे लगाए भगवान की सेवा में, इसका रहस्य क्या है वो बताइए। तब रामानुजाचार्य कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा से यह सब आपके शरण में आए। तब लक्ष्मीनारायण कहते हैं कि मेरी कृपा तो है लेकिन मैं तो बहुत प्रयास किया, उपदेश दिया, शास्त्र कीर्तना की, फिर भी लोग नहीं आए, पर आपके पास ऐसा कौन सा रहस्य है कौन से तो आपके इतने सारे भक्त आ गए। तब रामानुजाचार्य ने कहा कि जो आपने जो कार्य नहीं किया वो आपके नाम ने कार्य करके दिखाया है, जो आपका नाम है उस नाम को लेकर जो नमो नारायण मंत्र है वो मंत्र सबको मैंने प्रदान किया है, वो मंत्र के कारण सब आपके शरण में सेवा में आए हैं, तो इतना आपका आपका नाम का प्रभाव है। तो इस कलयुग में विशेष करके नाम का ही नाम संकीर्तन ही प्राय व्यक्ति को पाप से मुक्त करने का एक उपाय है। और प्रभुपाद भी और चैतन्य महाप्रभु भी चाहते हैं, और हरिदास ठाकुर से कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये हरिदास एक कली काल में यवन अपार, एक कलयुग में यवन अपार हैं, उनको कैसे इसका उद्धार होगा, चिंतित हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में लोगों का कैसे उद्धार होगा कि प्राय लोग यवन के समान हो गए हैं, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार, कली काल है यवन अपार गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार, लोग प्राय जो यवन के जैसे ही आश्रम कर, यवन मतलब मुसलमान ही नहीं, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो भगवान के विष्णु के शरण में जो लोग नहीं जाते हैं वो प्राय यवन के समान, प्रभुपाद तात्पर्य लगते जो ब्राह्मण और गाय की जो रक्षा नहीं करते हैं वो प्राय यवन के समान ही है, चाहे वो फिर भारत का हो या विदेश का हो कहीं भी का कोई क्यों ना हो, जो अपनी संस्कृति है, जो ब्राह्मण की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना वो जो नहीं करते हैं, वो प्राय यवन के समान है। तो चैतन्य महाप्रभु चिंतित है, इस चिंता से कैसे मुक्त होंगे इस कलयुग में। तब हरिदास साहब कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपने नाम ने आपके अपने नाम में इतनी शक्ति भर दी है, तो नाम आभास से लोगों का उद्धार हो जाएगा। नाम लेने की तो बात दूर, खाली आपका नाम का आभास कोई व्यक्ति कर लेगा, उसके मुख से अनायास कोई नाम आ जाएगा, फिर उनका नाम का उद्धार हो जाएगा। तो प्रभुपाद इस प्यार के तात्पर्य में ये अंतलीला तीसरा अध्याय में ये 50 नंबर का श्लोक है, उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की चिंता को दूर करना चाहते हैं, उनको हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना होगा। और जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की चिंता को दूर करना चाहते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको निश्चित रूप से हरिनाम का प्रचार करना होगा। और इस समय, वर्तमान समय में प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन जो कृष्ण भावनामृत संघ है, कार्य में लगे हुए हैं, और 10,000 साल तक इसी प्यार में प्रभुपाद ने कौर किया है। 10,000 हम सुनते हैं कि प्रभुपाद ने कहा है इस संस्था 10,000 साल तक चलेगी, लेकिन इसी प्यार में प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि 10,000 साल तक यह हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण संघ इस कार्य को, इस नाम को प्रदान करते रहेंगे, उसके बाद कलयुग का और प्रभाव बढ़ जाएगा और ये लुप्त हो जाएगा। तो 10,000 साल तक ये अवसर लोगों को देता रहेगा, हरे कृष्ण संस्था, हरे कृष्ण ये संघ है जो भगवान का संकीर्तन के द्वारा लोगों का उद्धार और पाप से नष्ट होगा, और वास्तविक में जो उनका कर्म बंधन से मुक्त होने का जो सरल और उपाय है, हरिनाम संकीर्तन, इस हरे कृष्ण आंदोलन द्वारा सभी को लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए इस कलयुग में प्राय यज्ञ और सब विधि निषेध है, लेकिन संकीर्तन यज्ञ ही प्रभुपाद के जो अनुवाद में कहा है, संकीर्तन यज्ञ ही सभी व्यक्तियों पाप से मुक्त कराएंगे। और इसी अवसर का लाभ लेते हुए हमें नाम संकीर्तन में प्रसार करना चाहिए, और अपने आप हमें भी, हम जो हमारा कल्याण चाहते हैं और हमारा उद्धार चाहते हैं, तो हमें भी नाम जप और नाम संकीर्तन करना होगा। तो इसी प्रभुपाद का भावार्थ सरल और सहज समझ में आ जाए, ऐसा सरल है। इस यज्ञ इस कलयुग में विधि नहीं है, और संकीर्तन यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और इस मार्ग को ग्रहण करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो इस प्रसंग से अभी ये परशुराम का प्रसंग अभी 2 श्लोक में रहेगा, फिर बाद में समाप्त, फिर बाद में विश्वामित्र का प्रसंग शुरू होगा। जो ये 7 चल रहा है, तो अभी सुखदेव गोस्वामी परशुराम का चरित्र समाप्त करके फिर बाद में विश्वामित्र का प्रसंग शुरू करेंगे। तो इस प्रसंग को सब भक्तों से हम सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। तो मेरी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आज्ञा अनुसार कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ, तो कुछ इसमें कुछ त्रुटि या भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। इसमें इस सभा में वरिष्ठ और विद्वान भक्त भी बैठे हैं, जन्माष्टमी प्रभु और आदिओ प्रभु सब भक्त बैठे हैं, लाल गोविंद प्रभु, तो निश्चित रूप से हमारी त्रुटि तो हुई होगी। तो इस वैष्णव समर हमें क्षमा कीजिए। इसी के साथ हम इस वाणी को विराम देते हैं, और कोई प्रश्न है तो जन्माष्टमी प्रभु से पूछिए। इस प्रसंग के अनुसार कोई प्रश्न है जन्माष्टमी प्रभु, इधर हम उनको पूछ सकते हैं, तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। आपका प्रश्न भागवत में स्थान क्यों दिया, प्रभु का प्रश्न है कि मैंने कहा जो परशुराम का चरित्र है वो अनुकरणीय भी नहीं है और अनुसरणीय भी नहीं है, तो फिर भागवत में स्थान क्यों दिया। तो मैं तो थोड़ा प्रकाश पाऊंगा, लेकिन सत्य रूप से तो जन्म प्रभु ही बताएंगे। लोगों को शिक्षा देने के लिए कि कर्म बंधन में कैसे लोग फंसते हैं, ऐसे अनुकरण भी नहीं, इसका उदाहरण देखा ना आपने, अनुकरण तो मतलब अगर कोई देखेगा कि उसके पिता का आज्ञा हुआ कि आप अपने माता और भाई का वध कीजिए, तो ऐसा अनुकरण करेंगे तो संभव है, असंभव है, ऐसा कार्य नहीं करेगा कोई व्यक्ति। और अनुसरण भी नहीं किया भीष्म पिता माने, जब उसने आज्ञा की कि आप शादी कीजिए तो भीष्म पिता ने साफ मना किया। यदि भी भगवान है तो उनकी आज्ञा का सर्वश्रेष्ठ आज्ञा माना, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, मैंने कहा ऐसा, लेकिन वो आज्ञा नहीं माने भीष्म पिता माने। देखा जाए तो आज्ञा चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी किसको, नित्यानंद प्रभु को, वो अवधूत थे, सन्यासी थे, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप शादी कीजिए, तो नित्यानंद प्रभु ने शादी कर लिया। जानते हैं ना सब भक्त, नित्यानंद प्रभु ने विवाह किया जाह्नवी माता से, वो पहले अवधूत थे सन्यासी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी तो किया दिया, भीष्म पिता ने नहीं माना। यदि भी देखा जाए तो बारह महाजन है, बारह महाजनों में स्थान है ना भीष्म पिता में, फिर भी आज्ञा नहीं मानी। तो ये कर्म बंधन कैसे लगता है जीव को, इसी दर्शाने के लिए इस प्रसंग को रखा गया है, और खास करके धर्म का स्थापना करने के लिए। रूपा एक श्लोक में तात्पर्य में दिया है कि जब जब धर्म बढ़ जाता है तो उनकी स्थापना के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। लेकिन प्रभुपाद सार में इसी में आके आएगा, ये 23वां नंबर श्लोक है ना, आगे 25 या 26वां नंबर श्लोक में आएगा प्रभुपाद, उसी में बताते हैं चाहे परशुराम हो या कार्तवीय अर्जुन हो या जमदाग्नि हो, उनको कर्मबंध लगेगा और उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यही शिक्षा मिलती है इस प्रसंग से कि हम कोई भी कार्य करें इस भौतिक जगत में कर्मबंधन लगेगा ही, कितना भी प्रभुपाद इसी श्लोक में भी तात्पर्य में दिया है। तो इस कर्मबंधन से छूटने के लिए एक ही उपाय है, हरे कृष्ण महामंत्र। जो कर्मबंधन से पाप होता है वो पाप से मुक्त होने के लिए, तो कर्मबंधन से कैसे मुक्त हो यही शिक्षा मिलती है। और अभी ये जो मैंने कहा अनुकरणीय भी नहीं है और अनुसरण भी नहीं है, वो शब्द भी मैंने सुना, किसी से परमिशन लिया है, मतलब मैंने पूछा था इसका पूरा रहस्य क्या है इस प्रसंग का, तो जो भागवत जानते उसने बताया कि सब 27 अवतार भगवान के ऐसा होता है कि वो जो अनुकरणीय भी नहीं होते और अनुसरण भी, अनुसरण करने का योग भी वो प्रसंग में नहीं होता है। शिक्षा यही है प्रभुपाद के मत के अनुसार कि हम कर्म बंधन से कैसे छूटे, जब कोई भी हो कर्म बंधन में, और विशेष तो आप ही बताएंगे इस श्लोक पर। इस पर दो माइक दो। वैसे बद्री का आश्रम से शुरू होती है लेकिन लुप्त तो होकर उसे गंगा जी में, ऐसे बताया है, गंगा के साथ वो बहती है लुप्त अवस्था में, प्राय देखा नहीं जाता है भारत में, आप कहीं भी देखिए नाम आता है। वैसे देखा जाए प्रयाग में भी त्रिवेणी संगम माना जाता है, लेकिन नदी तो वहाँ दो ही है। गंगा और जमुना, क्योंकि सरस्वती का प्रवाह लुप्त है प्राय, और विशेष जन्माष्टमी पर्व
उत्साह से भर गई गोदावरी नदी कि वो भूगर्भ मार्ग हमसे लगी कंधा